السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين.
إن شاء الله تعالى بديك دين سورة الزلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزلزال یہ مکی سورت ہے اور بعض جگہ پہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس کا نام اس کی پہلی آیت سے ہے، زلزالہ سے سورت الزلزال. امام ابن مردوے نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اذا زلزلت مدینہ میں نازل ہوئی، اور بعض روایات میں مکہ بھی آتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الف لام را سے تین صورتیں پڑھو. اس شخص نے کہا، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور میری زبان موٹی ہو گئی ہے، یعنی میں لمبی صورتیں نہیں پڑھ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حامیم سے تین صورتیں پڑھو. اس نے پھر پہلی بات دہرائی تو آپ نے فرمایا، مسبحات جو سبحا یا سبحو سے شروع ہوتی ہیں، وہ تین صورتیں پڑھو. اس نے پھر پہلی بات دہرائی اور کہا، یا رسول اللہ مجھے کوئی صورت جامع پڑھائیے، یعنی بہت جو کمپریہنسو ہو، جس میں بہت ساری باتیں ایک ساتھ آ جاتی ہوں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھائی، حتیٰ کہ اس کو پڑھا کر فارغ ہوئے ہوئے اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، یعنی اس سے آگے نہیں کچھ کروں گا، اتنا ہی کروں گا. تب آپ نے فرمایا، یہ شخص کامیاب ہو گیا، یہ شخص کامیاب ہو گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ سورت نصف قرآن کے برابر ہے، مگر ان روایات میں ضعف ہے، یعنی ضعیف روایات ہیں. مگر یہ سورت ویسے اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت پاورفل سورت ہے، گو کہ مختصر سورت ہے. اسی وجہ سے صحابہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بہت آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، اس کو زیادہ ترجیح دیتے تھے، یعنی سپیڈ بہت زیادہ تیز آپ اس کو نہ پڑھیں، سلولی پڑھیں، بجائے اس کے کہ کوئی لمبی سورت کو جلدی جلدی پڑھنے کے. یہ چھوٹی سورت ہے، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے، سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے، تو یہ اس طرح سے کام کرتی ہے جیسے ایک پالش کام کرتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گلاسز کا شیشہ صاف کرتے ہیں تاکہ صحیح نظر آئے، تو یہ بھی دل کے شیشے کو صاف کرنے والی ہے. اور یہ وہ سورت ہے جس کو سن کے، جب پہلی بار اتری تھی تو اس کو سن کے ابو بکر صدیق رونے لگے تھے، اور آج ہم بھی یہ سورت دیکھتے ہیں، اور ویسے تو کئی دفعہ سن چکے ہیں، کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، مگر اس سورت کو آج سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ دل کو نرم کرنے والی سورت ہے. کوشش کریں کہ ہمارے دل پر اس کا اثر ہو، اس کے لیے آپ لوگوں کا فوکس بہت ضروری ہے. ہم لوگ اکثر کوئی ڈرامے، فلمیں یا یہ دیکھ کے تو روتے ہیں، لیکن قرآن سن کے بھی ہمیں رونا آتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے اسلاف جو نیک لوگ تھے، وہ قرآن کریم کو پڑھ کے رویا کرتے تھے. اور علماء کہتے ہیں، جس چیز کو دیکھ کے آپ رو پڑتے ہیں، یہ نشانی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. اور قرآن کریم کو پڑھ کے رونا یہ نیک لوگوں کا شیوا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. دیکھتے ہیں اس سورت کو، और बुखारी की एक रिवायत इसके बारे में और आती है कि इस सूरत की जो आखिरी आयात है ना, वह जामियातुल फाजा है, यानी बहुत जामे है, बहुत यूनिक है। नहीं, इसके अंदर बहुत सारे मजमून जो है ना, यानी उनकी कल्मिनेशन, आप समझ लें आपकी पूरी जिंदगी का खुलासा उसमें है। हम क्यों दुनिया में आए और क्यों कयामत का दिन कायम होना है, ये आखिर में इस सूरत के बयान हो गया है। बहुत जामे सूरत है। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईदा, जब जुलजीलत, हिला मारी जाएगी जलजले से, अल-अर्द, जमीन, जिलजालहा, हिला मारा जाना, हा उसका, मोनस की जमीर इसलिए क्योंकि अर्द मोनस है। पहले तो लफ्ज ईजा, ईजा का जो लफ्ज है ये हमेशा फ्यूचर के लिए आता है, जैसे कि इद माजी के लिए आता है, ईजा मुस्तकबिल के लिए आता है, और जब का माना हम करते हैं। और जब का माना तब किया जाता है जब कोई शक ना हो, जैसे हम कहें कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको ये दे देना, ठीक है? तो इसका मतलब है कि जब बच्चे स्कूल जाएंगे, नहीं, या कहें कि जब कल बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इसका मतलब डेफिनेटली कल जा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं ये कहूं, अगर कल बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको ये दे देना, तो अगर में शक है, पता नहीं है जाते हैं या नहीं, लेकिन जब, जिस वक्त मैं बोलती हूं, तो इसमें यकीनी बात है कि जरूर जाएंगे। तो यहां पे ईद नहीं कहा गया, ईदा कहा गया, जब ये होगा, और इन नहीं कहा गया कि अगर ये होगा, यहां पे ईजा कहा गया। जुलजीलत, हिला मारी जाएगी, ये जिलजाल से है, जई लाम, जई लाम, और जल जल्ला कहते हैं फिसलने को, स्लिप होने को, ट्रिप होने को। और जब रिपिटिशन होती है हरूफ की, तकरार होती है, तो इसका मतलब है बार बार होना, किसी चीज का मुसलसल होना, जैसे दम दमा, पाउंडिंग वॉइस है ना ये, बार बार। तो जलजाल का मतलब बार बार फिसलना, बार बार हिलना। यहां पर हमें पता चलता है कि जो जमीन है वो शदीद तौर पे हिलाई जाएगी। जिलजालहा, हिला मारा जाना इसका, यानी ये पैसिव में एक तो जुलजिलत आया, पहले तो इसको देख लें, और जिलजाला हा, हा की जमीर जमीन की तरफ जा रही है, बुरी तरह इसका हिलना, और हा की जमीर ये बता रही है कि ये कोई खास जलजला है जो इसका है, ये आम जलजला नहीं है। पहले जुलजिलत को देखें, ये मजहूल है, मारूफ नहीं है, अल्लाह ताला ने इसको हिला दिया ये नहीं कहा गया, हिला मारी गई। तो फाइल यहाँ पे पता नहीं चल रहा। इसका मतलब जब ऐसा होता है तो इसकी दो वजूहात होती है, जब पैसिव में बात आती है, एक तो ये कि फाइल इतना ज्यादा वाजे है कि बताने की जरूरत ही नहीं, कौन ये कर सकता है पूरी जमीन को हिला मारे सिवाय अल्लाह की जात के और कोई नहीं। दूसरी ये कि ज्यादा तवज्जो आप इस काम की तरफ दें जो हो रहा है, यानी जलजले की तरफ, कि वो कैसा जलजला होगा। और तीसरी बात ये कि मजहूल में वो काम आता है जो आसान है करने वाले के लिए, जैसे आप कहते हैं ना हो जाएगा आपका काम, आप ये नहीं कहते मैं कर दूंगी आपका काम, हो जाएगा आपका काम, इसका मतलब क्या है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं। तो ये तीन आपको मैंने बातें बताई पैसिव टेंस में बात आने के। तो यहां पे मजहूल पैसिव आया यानी जुल जिलत आया, जलजल अल्लाहुल अर्ब नहीं आया। फिर जिलजाला हा, इसलिए कि ये खास इसका इस जमीन का जलजला है जो यूनिक है, ना कभी ऐसा पहले हुआ ना कभी होगा, ये मुख्तलिफ है। देखिए दुनिया के बाकी जलजलों से ये कैसे मुख्तलिफ होगा, दुनिया के जो दूसरे जलजले हैं वो चंद सेकंड के लिए होते, जो इस वक्त दुनिया में सबसे लंबी ड्यूरेशन का जलजला कोई भी रेक्टर स्केल के ऊपर नापा गया है वो 10 मिनट का है, इससे ज्यादा का कभी जलजला नहीं आया। लेकिन ये जलजला कैसा होगा, ये वो जलजला होगा जो रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बताया ना जलजल इसके अंदर रेपिटेशन है। इतना होगा ऐसे ही इसकी उलमा ने मिसाल दी जैसे कि कश्ती भंवर में फंस जाती है और वो कैसे कश्ती गोल गोल घूमती है और कैसे अचकोले खाती है, इस तरह की हालत इस जमीन की होगी। या आपने देखा है बच्चे कभी रैटल लेते हैं, ये जो चुनचुना होता है वो लेके कैसे शेक करते हैं उसको हिलाते हैं, इस तरह इस जमीन की हालत होती होगी उस दिन। तो दुनिया का छोटा सा सिलसिला जो चंद सेकंड का होता है और रेक्टर स्केल पे मामूली सा होता है, उसके ऊपर इंसान की हालत क्या हो जाती और ये जलजला कैसा होगा। तो ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। दुनिया के जलजले हमें याद दिला देना चाहिए, हम अपने आप को हमें याद दिलाने के लिए कि हम ये सोचेंगे कयामत का जलजला क्या चीज होगा। तो उसके ऊपर तो कोई बिल्कुल अल्लाह को भूला हो ना तो वो भी माय गॉड और वो गॉड और या अल्लाह कहने लगता है, ये इंसान की हवाइयां उड़ जाती हैं। तो वो जलजला कैसा होगा जो आखरत का होगा। दूसरी बात ये कि दुनिया के जलजले रेक्टर स्केल पे नापे जा सकते हैं, वो नापा नहीं जा सकेगा, कोई भी पैमाना उसको नाप नहीं सकता। तीसरी बात यह कि दुनिया के जलजलों पे कुछ उसके बाद कुछ रिपेयर हो सकती है, मगर ये जलजला ऐसा है कि इसके बाद दोबारा कभी जिंदगी इस दुनिया के ऊपर कायम नहीं हो सकती, जिंदगी शुरू नहीं हो सकती। तो ये इतनी वायलेंटली हिलेगी ये जमीन, और ये इस दुनिया के जलजलों का आने में हमारे लिए याद दिहानी है। आज दुनिया में अगर जलजला आता है, एक और इसके अंदर चौथी बात, तो वो किसी एक जगह पे आता है। एक मुल्क में जलजला आया तो एक शहर में आता है, बाकी मुल्क को पता भी नहीं होता कि जलजला आया, हमें खबरों में पता चलता है। मगर ये जलजला वो है कि जिसके ऊपर सारी जमीन हिल जाएगी, कोई जगह सुकून की नहीं होगी, और ये डेफिनेटली होने वाला है, डेफिनेटली। अब इस जलजल से मुराद कौन सा नफखा है? नफखाए अव्वल, जिस पर कयामत कायम होगी, जिस पर ये जलजला आ जाएगा, जिससे पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, जिससे समंदर भड़क उठेंगे, जिससे हैवान परेशान होके भागेंगे, जिससे सबकी एक अमूमी मौत आ जाएगी, ये पहला मरहला है। दूसरा, जब नफखा फूंका जाएगा तब तो आसमान और जमीन की सारी मखलूक दोबारा उठ खड़ी होगी। बाज लोग कहते हैं दूसरे में मर जाएगी और तीसरे में दोबारा खड़ी होगी। तो बात एक ही है, या तो पहली से बेहोशी तारी होगी और दूसरी से या अफरा तफरी होगी और दूसरी से सबकी मौत होगी और तीसरी से खड़े होंगे। तो जिस पर ये खड़े हो जाएंगे। बास कहते हैं कि ये वो नफखा है, जो पहला है वो जलजला तो सा है, और ये है जिसके अंदर दोबारा खड़े होना है। तो एक तो वो है जिसका सूरतुल हज में भी हम पढ़ते हैं, आए हैं, या अय्युहन्ना सुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लत अस्सा'ति शय्युन अज़ीम। ए लोगो, अल्लाह से डर जाओ, आखरत का जो जलजला है ना, जलजला तो सा, कयामत का जलजला, वो बहुत बड़ी चीज है, उस दिन का जो भूंचाल है वो बहुत बड़ा है। जिस दिन क्या होगा, हर दूध पिलाने वाली दूध पीते को भूल जाएगी, हर हामिला का हमल गिर जाएगा। और आज भी बताते हैं कि रिसर्च बताती है कि जब जलजला आता है तो जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनकी जल्दी डिलीवरी हो जाती है, या वो मिस कैरेज हो जाता है उनका। तो ये बड़ी आफत इस दुनिया पे आने वाली है। उस वक्त वह अखरजतिल अर्दु अथकालहा, उस वक्त निकालेगी जमीन बोझ अपने, अथकाल बोझ को कहते हैं, बर्डन्स, जैसे आप कहते हैं ना सकील, ये चीज बड़ी सकील है, हैवी है। अस्काल सफरी सामान को भी कहते हैं, जो आपका लगेज होता है उसको भी कहते हैं, फर्नीचर को भी कहते हैं। तो यानी ये एक वक्त होगा कि अखराजा अता एंड में इसलिए आ रही कि अर्द जो है मुअन्नस है ना, तो अखरज कहते हैं निकालने को, उस चीज का निकालना जो पहले छुपी हुई थी। तो जमीन उन चीजों को निकाल देगी बाहर जो पहले छुपी हुई थी, अपने बोझों को। पहली तो बात यह कि दुनिया के जलजले देखें चीजों को फ्लैट कर देते हैं, इसमें क्या होगा, चीजें बाहर आ जाएंगी। वो कौन सी चीजें हैं, यहां से थोड़ा सा पता चलता है कि ये दूसरा नफका होगा जिसके अंदर सब खड़े हो जाएंगे, या जिसको तीसरा नफका कहते हैं, जिसमें सबके सब दोबारा जिंदा होंगे। अल्लाह अकबर, के जिसमें के जमीन अपनी सारी चीजें निकाल के बाहर कर देगी, अपने पेट को खाली कर देगी, और इसके असकाल क्या हैं, इसके बोझ क्या हैं। नंबर वन, जिन्नो इंस, क्योंकि सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, सनफरुगु लकुम अय्युहस्सकलान, अमन करीब तुम्हारे लिए फारिग होने वाले हैं ए दो बोझो। तो वो दो बोझ क्या है, जिन्नो इंस। तो वहां से इसकी दलील मिलती है, यस्काल से मुराद जिन्नो इंस है। ये जमीन पर बोझ है, कैसे कैसे जमीन पर बोझ है। मैं आपको एक हदीस से बयान करती हूँ कि एक दफा ऐसा हुआ कि एक जनाजा जा रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब दुनिया से जाता है तो वो दुनिया के मसाइब से राहत पा जाता है, और जब काफिर जाता है तो उससे जमीन, लोग, शहर, दरख्त और जानवर सब राहत पाते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जमीन पे बोझ है। जो भी नाफरमान है, जो भी गुनाह करने वाले हैं, जो भी काफिर हैं, मुशरिक हैं, एथीस्ट हैं, जो भी अल्लाह ताला को नहीं मानते, जो भी उसकी नाफरमानियां करते फिरते हैं, वो इस जमीन पर बोझ है। इसलिए कि यह जमीन अल्लाह की फरमा बरदार है, और इसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई इसके ऊपर नाफरमानियां करे। तो उसने आज तक अपने आप को रोका हुआ था, आज तक वो सिर्फ देख रही है, सब कुछ को रिकॉर्ड कर रही है, जो आगे आएगा भी सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, सब कुछ देख रही है। इसके अंदर भी हिस्स है, ऐसे आपको पता है पत्थरों में हिस्स है, बेजान जिन चीजों को आप समझते हैं उनमें भी हिस्सा है, इस जमीन में भी हिस्सा है। एक जगह पे आता है ना कि जब इंसान गुनाह करता है इस जमीन के ऊपर, तो जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत दे तो मैं फट जाऊं, इसको अपने अंदर ले लूं। समंदर कहते हैं अल्लाह हमें इजाजत दे तो हम इसके ऊपर चढ़ दौड़े। आसमान अगर इस शिर्क को सुन ले जो इंसान करते हैं, तो वो टूट के गिर पड़े। तो ये सब चीजें अल्लाह की नाफरमानी को बर्दाश्त नहीं करती, इसका बस नहीं चलता ये फट जाए और अपने अंदर लोगों को ले ले। लेकिन ये क्यों रुकी हुई है? ओके, अल्लाह ताला ने इसको इजाजत नहीं दी। तो अखरजतिल अर्दु अस्कालहा, निकाल देगी जमीन अपने बोझ। एक तो मुर्दों को निकाल देगी, जो भी इसके अंदर जा चुके आज तक आदम अलैहि सलाम से लेके आखिर तक, उनको उगल के बाहर निकाल देगी। ठीक है, दूसरी बात कि ये जमीन जो भी इसके अंदर है, सोना चांदी मिनरल्स ऑयल के रिजर्वॉयर्स जो भी हैं, सब हीरे जवाहरात और खजाने जितने हैं, उनको सबको बाहर निकाल के खाली हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन अपने कलेजे के टुकड़ों को उगल देगी, सोना चांदी मिसल सतूनों के बाहर पड़े होंगे, यानी इतना सोना चांदी होगा टावर्स के बराबर। आप ये सोच लें, जैसे समझ लें कि एक बैंक है, बैंक के जितनी तिजोरियां हैं, जितने उसके अंदर सेफ बॉक्सेस हैं और जितने पैसे हैं उसके अंदर, सब उड़ना शुरू हो जाए बाहर, सब उड़ रहे हैं, और उसके जो सेफ बॉक्सेस हैं जिसमें लोगों ने अपने सोने चांदी रखे हैं, वो भी बाहर आ गए। अगर आपको वो नहीं समझ आता कि किस तरह से खजाने बाहर होंगे, तो कम से कम बैंक का तो समझ आता है ना, बैंक में जितने नोट हैं वो उड़ने शुरू हो जाए, लेकिन कोई उसको लेने वाला नहीं होगा। तब हदीस में आता है कि कातिल उसको देख के अफसोस करेगा कि हाय, इस माल के लिए मैंने फलां को कत्ल किया, जबकि ये यूं इधर उधर बिखर रहा है, कोई आंख भर के उसको देखता नहीं होगा। इसी तरह सिला रहमी तोड़ने वाला कहेगा, इसकी मोहब्बत में आके रिश्तेदारों से मैं सलूक नहीं करता था। चोर कहेगा, इसकी मोहब्बत में मैंने हाथ कटवाया। गर्ज ये माल यूं बिखरा हुआ पड़ा होगा और कोई उसको लेने वाला ना होगा। इंसान हक्का बक्का रह जाएगा, कहेगा ये क्या, ये सब ये बाहर पड़ा हुआ है और मैंने इसकी खातिर। आप खुद सोचे ना, आज दुनिया में लड़ाइयां किस वजह से ज्यादातर होती, ये जो हलाल हराम की परवाह किए बगैर जो कमाइयां हो रही हैं, बिजनेस में फ्रॉड, जॉबों में, या ऐसे ऐसे काम करना जो हराम कमाई वाले हैं, अल्लाह ताला ने मना किए हमें, वो क्यों करते हैं हम? पैसे के लिए ना, मुकदमे आधे से ज्यादा कोर्टों में क्यों होते हैं? उसने मेरा इतना हथिया लिया, उसने मेरी जमीन ये ले ली, इतना हमारा बनता था, इसने नहीं दिया। और इंसान रिश्ते नाते क्यों तोड़ता है? सिर्फ इसीलिए ना कि पैसे उसने हमें नहीं दिया, ये खा गए, इन्होंने हमारा हिस्सा ले लिया। फिर इसी तरह इंसान अपनी जवानियों को किस चीज के पीछे घुला देता है, अपनी जिंदगी किस चीज के पीछे लगाए हुए है, यही चीजें पाने के लिए ना। उस वक्त इंसान रियलाइज करेगा इसकी क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, जिसके पीछे मैंने रिश्ते तोड़े। क्योंकि रिश्ते तोड़ना एक बड़ा गुनाह है, इसके पीछे मैंने अल्लाह की नाफरमानी की, इसके पीछे मैंने हराम खाया, कैसी हसरत होगी, क्योंकि हर चीज पड़ी होगी बाहर, आज कोई लेने वाला नहीं आए, को आज कोई पूछने वाला नहीं। इमेजिन करें जरा इस चीज को, कि हर तरफ पैसे बिखरे हुए जमीन पे, हर तरफ सोने के, हीरे के और इस मोतियों के सेट हैं और ईंटें हैं, और वो बिखरी पड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसल सतूनों के, यानी इतना सोना चांदी, इतने ज्यादा खजाने होंगे जो बाहर बिखरे हैं, बड़ी बड़ी ईंटें पड़ी हुई हैं सोने की, कोई लेने वाला नहीं, ज्यूल्स पड़े हुए, कोई लेने वाला नहीं। अल्लाह अकबर, आज ये बात हमें रियलाइज नहीं होती कि इसकी कोई ऐसी वर्थ नहीं है जिसके पीछे हमने अल्लाह को नाराज किया हुआ, उस दिन इसकी वर्थ पता चल जाएगी। وقال الانسان ما لها, اور کہے گا انسان اس وقت, آج تو بھولا ہوا نا, انسان اس وقت کہے گا مالہا, کیا ہو گیا اس کو, کس کو, اس زمین کو. ہاں کی ضمیر جو ہے نا زمین کی طرف جا رہی, کیونکہ زمین اتنی شدت سے ہل رہی ہوگی کہ اگر وہ زبان سے نہیں بھی کہتا تو اس کے زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوگا, یہ کیا ہو گیا, واٹس رانگ ود اٹ. جو مردے بھی اندر سے نکلیں گے وہ بھی کہیں گے کہ کیا ہو گیا, یعنی وہ تو کبھی بھی انسان نے اس زمین کو اس طرح تو نہیں دیکھا ہوتا. اب یہاں پہ الانسان کہا گیا, الناس نہیں کہا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ جب افرا تفری ہوتی ہے, جب بھی دیکھیں دنیا میں کوئی زلزلہ, کوئی حادثہ, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, سب کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے نا, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا. اس لیے الانسان بتایا گیا کہ یہ ہر انسان کی حالت ہوگی, کہ جو اس کے اوپر اپنی, اس کے اوپر بیت رہی ہوگی, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, میری برادری کہاں ہے, میرا قبیلہ کہاں ہے, میرے دوست کہاں ہیں, میرے رشتے دار کہاں ہیں, سب اکیلے ہیں. آج رشتے ناتے سب ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے. حالانکہ آپ سوچیں, ساری انسانیت اس وقت کھڑی ہوگی, اس سے بڑا مجمع کبھی نہیں اس زمین نے دیکھا. حتیٰ کہ انسان یعنی ہر طرف دیکھے گا تو سوائے سر کے کچھ نظر نہیں آئے گا, کہ ساری سر ہے, اتنے انسان ہیں کھڑے ہوئے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا, بالکل اکیلا محسوس کرے گا, لونلی ہوگا. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کو سوائے اپنے دو قدم رکھنے کی جگہ کے اور کوئی جگہ نہیں ملے گی, صرف دو قدم رکھنے کی جگہ ملے گی اس کو, کوئی لیٹنے کی جگہ نہیں ہوگی, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی, کوئی ریسٹ کرنے کی, ریلیکس کرنے کی جگہ نہیں ہوگی, صرف دو قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. اتنی مخلوق ہوگی, یعنی اتنی جیم پیکڈ ہوگا, اتنا ٹائٹ ہوگا, وہ جہاں پہ کھڑا ہے نا وہ جگہ اتنی ٹائٹ ہے, کھلے کھلے نہیں کھڑے ہوئے. ابھی تو ہم حج پہ جاتے, عمرے پہ جاتے, گھبراہٹ شروع جاتی ہے, لوگ اتنے زیادہ ہیں, آئے ہم سے نہیں جایا جاتا, یہاں پہ تو بہت رش ہے. لیکن اس رش کا تصور کریں جب آپ حج وغیرہ پہ جائیں, تو اس رش کا تصور کریں جو قیامت کے دن ہوگا حشر کے میدان میں, کہ لوگ اس قدر ٹائٹ ہوں گے سوائے دو قدم رکھنے کی جگہ کے. امیجن کریں دو قدم رکھنے کی جگہ کتنی ہوتی ہے, یعنی نہ آگے ہو سکتے, نہ پیچھے, نہ بیٹھ سکتے, نہ ہل سکتے, اتنے ساتھ جیم پیکڈ ہوں گے. اس وقت الانسان ہے کہ ہر انسان پہ اپنی اپنی بیت رہی ہوگی. اور جب بھی الانسان کہا جاتا ہے نا, تو ہمیں پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے, جیسے الناس کہا جائے نا تو ہم سوچتے ہیں اس کو کہا جا رہا ہے, اس کو کہا جا رہا ہے, ہاں وہ ایسے کرتے ہیں, ہاں وہ ضرور ایسے کہے گا. جب الانسان کہا جائے تو ہر ایک اپنے آپ پہ دیکھے کہ میں کہاں ہوں گا. تو اس وقت جیسے ہم سورہ یاسین میں پڑھ چکے ہیں نا, انسان کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے میری کمبختی, کس نے مجھے اٹھا دیا میری قبر سے. تو جو انسان اس وقت ہکا بکا ہو جائے گا اور پریشان ہوگا, کیونکہ وہ ایمان جب نہیں رکھتا تھا اس دن کے اوپر, یا بھولا رہا اس دن کو, تو آج اس کی یہ حالت ہے. جو ایمان والا ہے اور جس نے اس دن کو یاد رکھ کے زندگی گزاری, اس کو تو پتا ہے, وہ تو ہر لمحہ اسی دن کی تیاری میں لگا رہا, وہ تو اٹھ کے کہے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, وہ تو کہے گا اسی کا تو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے. لیکن جو فاجر ہے, جو دھبولا ہوا اس دن کو, وہ کہے گا ماں لہا, کیا ہو گیا اس کو, یہ کیا ہو گیا. اب شاکڈ ہے نا وہ انسان بھی جس کے زندگی میں اس نے اس دن کو برائے نام یاد رکھا, یعنی بس منہ سے تو کہتا تھا ہاں آئے گی قیامت, لیکن اس کے بعد اس کو کوئی اس کا احساس نہیں, کوئی اس کا یقین دل میں نہیں, کوئی اس کا عمل اس کے مطابق نہیں, وہ بھولا رہا, اب شوق میں آ گیا نا. جیسے آپ کو بالکل ایسے مثال دیتی ہوں, ایک مثال ہے, دیکھیں ہم سب کو پتا ہے مرنا ہے, یعنی قیامت سے بھی زیادہ ہمیں اس چیز کو, ہم دیکھتے ہیں قیامت کو تو روز نہیں دیکھ رہے, لیکن اس چیز کو ہم روز دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے. और हमें यकीन है कि हमें भी एक दिन जाना है, इसके बावजूद क्या बात होती है कि अगर हमें डॉक्टर कह दे कि आपके पास टाइम कम है, मेरा बस इतना सा टाइम है आपके पास, तो क्या हालत हमारी हो जाती। क्या हमें यकीन नहीं था? था, लेकिन हम भूले हुए थे ना इसी मौत को। इसी वजह से हमारी हवाइयां उड़ जाती हैं, इसी वजह से हम कांपने लगते हैं, हाय ये क्या हो गया, इसी वजह से हम चिल्लाने लगते हैं, हाय ये जैसे कि कोई अनहोनी बात मेरे साथ हो रही है। अनहोनी तो नहीं हो रही, लेकिन मैं भूली भी थी इस दिन को, इसलिए मैं शॉक में आ गई कि ये क्या हो गया। क्या जाना नहीं था? क्या जवान दुनिया से नहीं जा रहे थे? क्या उधेड़ उम्र नहीं जा रहे थे? क्या मैं रोज जनाजे उठते नहीं देख रही थी? देखती थी, लेकिन मुझे अपने आप के लिए कभी यकीन नहीं था ना। क्या मैं लोगों को अचानक हार्ट अटैक से दुनिया से जाते नहीं देखती थी? देखती थी, लेकिन मुझे अपने आप के लिए कभी ये नहीं था कि मैं भी चली जाऊंगी। इसलिए हम शौक में आ जाते हैं। तो जब इंसान भूला होता है ना, ये सिर्फ काफिर की बात नहीं है, ये उस सब की बात है जो भूल के जिंदगी गुजारते हैं। हाँ कयामत है, हाँ एक आनी है, हाँ पढ़ भी लिया, उससे भी ज्यादा हमें यकीन है कि हमारी मौत कल आ सकती है, आ जा सकती है। लेकिन वो सिर्फ यकीन वर्बली है, जुबान की हद तक है, हमारे दिल में नहीं है। जब भी हम पैनिक करने लगते हैं कि ये हो क्या गया, ये मेरे साथ होने लगा, डॉक्टर ने जब कह दिया, तो अब हमें दिल में आया कि हाँ, अब यकीन दिल को आया कि हाँ मैं भी जा सकती हूँ। तो इसी तरह वो इंसान जिसने पढ़ा सुना, कभी तवज्जो नहीं दी, अच्छा आएगी क्यामत, जब आएगी तो तब आएगी, कभी उसको आगे रख के जिंदगी नहीं गुजारी, उसको भुला के गुजारी। अब वो कहेगा मा लहा, बिल्कुल उसकी तरह जैसे जो डॉक्टर के ऊपर जाके कहता है ये क्या हो गया, वाकई, और वो सटपटा जाता है। खुद सोच लीजिए, आज अपने आप को यहां पे रख के हमें ऐसा पैगाम मिल जाए, हमारे पास टाइम थोड़ा रह गया तो हमारी हालत क्या होगी? क्या मुतमईन है? क्योंकि देखिए एक दिन तो जाना ही है। और क्या इसके ऊपर हमें कोई न, न, यानी ऐसी तसल्ली है, इसकी तो तैयारी मैंने की थी? या फिर पैनिक हो जाते हैं, या फिर घबरा जाते हैं, सटपटा जाते हैं, ये क्या हो गया, इसका मतलब भूले हुए थे। तो ये वो इंसान कह रहा होगा जिसने इसको याद नहीं रखा, यौम इदिन, उस दिन। देखिए यौम इदिन जब आता है ना, तो ये बहुत ही एक पावरफुल तरीका है कहने का, उस दिन। यानी इस टोन के अंदर ना एक गजब है, गुस्सा है, जैसे हम कहते हैं ना, उस दिन समझ आएगा तुम्हें जब तुम्हारे साथ ये होगा, ऐसे होता है ना। तो उस दिन के अंदर क्या है, एक धमकी भी है और एक सख्ती भी है, उस दिन पता चल जाएगा तुम्हें। तो उस दिन तुहद्दिसु बयान करेगी, हद्दसा कहते हैं नई बात को, लेकिन वो नई बात ऐसी नहीं है कि जो पहले पता ही नहीं थी, वो पता थी मगर वो भूली भी थी। अब जिस वक्त सामने आई तो याद आया, मैंने जैसे कि आपको मसलन है कि कोई बात, एक मिसाल से, जैसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ऊपर, उनको पता थी वो आयात जो सूरह आले इमरान में आई, लेकिन फरमाया कि जब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने वो ही आयात पढ़ी, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, तो वो ऐसे फरमाते हैं जैसे ऐसे लगा जैसे आज उतरी। यानी बात पता होती है कई दफा, लेकिन उस वक्त जहन में नहीं होती ना, भूल गए होते हैं उसको, तो फिर कोई याद दिलाता तो फिर अच्छा हाँ ऐसे लगा है, पहली दफा बात सुनी। तो वो बयान करेगी वही खबरें जो इंसान भूल गया हुआ है, उनको ये जमीन बयान करेगी, अखबारहा, अपनी खबरें, हा की जमीर फिर जमीन की तरफ जा रही, खबर अपनी, अब एक था नबा और एक है खबर। नबा भी बड़ी खबर को कहते हैं, लेकिन नबा वो होती है जिसकी कभी इंसान तवक्को नहीं रखता, और खबर वो होती है जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नबा वो होती है जिसके बारे में आप कभी खुद से नहीं जान सकते। वो जैसे रसूलों ने बताया वो ही है। खबर वो होती है जो आप खुद भी जान सकते हैं, ये अपनी खबरें हैं ना, अपनी जिंदगी की खबरें जो वो बयान करेगी। ऐसे लगेगा पहली दफा ही सुन रहा है। अल्लाह अकबर, क्योंकि इंसान भूल गया होता है मैंने क्या किया। इसी तरह नबा जो होती है हाल और मुस्तकबिल के लिए, और खबर जो है वो माजी के लिए और हाल के लिए होती है। जो गुजर चुकी ना वो बातें ये जमीन बयान करेगी, यानी ये गवाह है लोगों के अमाल की, जो जो इसके ऊपर करते रहे बुरे या भले। क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह ताला इस जमीन को हुक्म देगा, क्योंकि आगे आ रहा है, बी अन्ना रब्बक अवहा लहा, क्योंकि बेशक तेरे रब ने वही की, लहा उसके लिए। अल्लाह ताला ने इसको हुक्म दिया तो ये बयान करेगी खबरें। वो रब जो इस जुबान को बुलवा सकता है, वो इस जमीन को भी बोलने की ताकत दे सकता है, और एक दिन आएगा कि ये बोलेगी। और इसकी खबरें क्या होंगी? हर मर्द और औरत के बारे में होंगी जो आमाल भी वो इस जमीन पे करते रहे। ये बोलेगी तुम ये करता था, फलां फलां दिन इसने ये किया मेरे ऊपर। देखिए जहां और गवाहियां होंगी ना, आजा गवाही देंगे इंसान के लिए, उसके फरिश्ते गवाही देंगे, उसका आमाल नामा उसके ऊपर गवाह है। इसी तरह ये पत्थर, ये दरख्त, जैसे मुअज्जिन अजान देने वाला जो है उसकी गवाही ये शजर और हजर देंगे, पत्थर भी और दरख्त भी जो भी सुनते हैं। और इसी तरह तलबिया जब आप पुकारते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो तब भी इसकी गवाही भी जो जो चीज सुन रही है वो देगी। इसी तरह ये जमीन गवाहियां देगी, मेरे ऊपर इसने ये किया, फलां जगह बैठ के इसने फलां फलां बातें की। क्योंकि आप इस जमीन से हट के तो नहीं कुछ कर सकते ना। वो जैसे किसी ने कहा, अगर गुनाह करना है तो वहां जाके करो जहां पे उस अल्लाह की बादशाहत ना हो। अगर गुनाह करना है तो उस जगह पे जाकर करो जहां पर वो रब देख ना रहा हो, यहां पे उसकी जमीन ना हो, उसका आसमान ना हो, तो कहां जाके गुनाह करेंगे? क्योंकि हर जगह पे जहां पे भी आप जाएंगे, जमीन से बाहर तो कहीं पे भी नहीं निकल सकते ना, किधर जाके करेंगे? हैं तो इसी जमीन के अंदर, इसी के ऊपर घूम रहे होंगे, फिर रहे होंगे, कहीं बैठ रहे होंगे, कहीं लेट रहे होंगे, कितना छुपेंगे? हजार पर्दे भी डाल लें तो जमीन से कैसे छुपेंगे? कभी सोचा आपने, जब कोई सीक्रेट बातें या कोई गुनाह के काम छुप के कर रहे हो, तन्हाई में कर रहे हो, किसी को भी नहीं पता, आपने फोन पकड़ा हुआ है, कोई भी नहीं जानता इस फोन पे क्या देख रहे हैं, उस वक्त ये नहीं सोचते कि ये जमीन तो हर चीज रिकॉर्ड कर रही है? और अब इंसान ने यहां तक तो रिसर्च कर ली है कि कहते हैं कि आप की जो भी आवाज है ना, वो इसी जो आपका माहौल है इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही हैं आवाजें, और इंसान कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिट्रीव करें, ये वो ही आवाजें जो महफूज हुई हुई हैं। आज ये जैसे मैं बोल रही हूं तो ये महफूज हो गई इसी खला में। वो कहते हैं इन आवाजों को वो वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो, यानी किसी आले के जरिए उसको वापस लेकर आए कि वो क्या कहा गया यहाँ पे। सुभान अल्लाह, आज हमारे पास ये अलेक्सा और क्या क्या चीजें इस तरह की हैं जिनमें चीजें रिकॉर्ड होती हैं। इवन हमारे फोन्स, हम कोई बात करते हैं तो उसके बाद हमारे फोन्स के अंदर वही चीजें आने शुरू हो जाती हैं। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि इतनी चीजें तो हम अपने सामने देख रहे हैं। आप कॉफी की बात करें, अभी थोड़ी देर में कॉफी का इश्तिहार आने लगेगा। आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं कोई बात करें, उसी वक्त आपके फोन के ऊपर वो चीजें आने शुरू हो जाती हैं। तो आप कहते हैं ये कैसे हो गया? क्या फोन भी सुन रहा है? क्या ये आला एक मशीन है ना? और जमीन के बारे में और पत्थरों के बारे में और ये इन चीजों के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पत्थरों की तस्बीह सुनाई सहाबा कराम को। पहाड़ हैं जो कि जानते हैं, पहाड़ों की अंदर भी एक हिस्सा है, درختوں میں حصہ ہے، درخت جھک گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ہم یہ اس چیز کو ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے وہ اپنی خبریں بیان کرے گی، کیسے اس کو پتا چلے گا، کیسے وہ بول سکتی ہے یہ تو زمین ہے اس کو کیا پتا. نہیں، جب انسان کی نیوز نشر ہونے لگیں گی، دیکھیے اللہ اکبر، کسی کا پتا چل جائے نا کہ اس کی ویڈیو لیک ہو گئی، اس کو ہم کہتے ہیں اس کی ویڈیو لیک ہو گئی، تو انسان کی اوسان خطا ہو جاتے ہیں، ہائے کیا ہو گیا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی فلاں وقت میں، ہائے ہائے کوئی ویڈیو بنا نہ لے، تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے. وہ ایک انسیڈنٹ کی ویڈیو ہے جو لیک ہو جاتی ہے، تو کتنے راز کھل جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کی بدنامیاں ہوتی ہیں اور کتنے لوگوں کے کچے چھٹے سامنے آ جاتے ہیں. امیجن کریں کہ یہ زمین جب ہماری خبریں نشر کرنے لگے گی تو وہ کیا ہوں گی. اور وہ جو سیکرٹ میں کیے ہوئے ہیں، چاہے وہ تہجدے ہیں، چاہے وہ سجدے ہیں، چاہے وہ چغلیاں ہیں، چاہے وہ غیبتیں ہیں، چاہے وہ جھوٹ ہیں، چاہے وہ برے یا کوئی اعمال ہیں، چاہے وہ سازشیں ہیں، سب جب زمین یہ نشر کرے گی. آج تو ہم خبریں لوگوں کی سنتے ہیں نا، کسی ایک بات کی، کسی ایک ملک کی، کسی ایک جگہ کی، کسی ایک سیاستدان کی، اور ہم منہ میں انگلیاں دبا دیتے ہیں، ہائی یہ ایسے نکلا، ہائی دیکھو اس کا تو لیک ہو گئی، اس کی یہ ویڈیو یہ ایسا تھا. اور سوچے جب میری اور آپ کی خبریں نشر ہوں گی حشر کے دن، تو تب کیا ہوگا. وہ اچھی بھی ہو سکتی ہیں، وہ بری بھی ہو سکتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے سوچا یہ زمین میری ساری خبروں کو نوٹ کر رہی ہے. ہم کہتے ہوتے ہیں وہ آہستہ بولو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، تو جتنی مرضی آہستہ بول لو، یہ زمین تو سن رہی ہے. اس دن کیسے بچیں گے جب سارے گواہ کھڑے ہو جائیں گے، اپنے اعضاء ہی اپنے نہ رہے، فرشتے بھی کھڑے ہو گئے، اعمال نامے بھی آ گئے، زمین بھی بولنا شروع ہو گئی اور ہر ہر بات کی خبر دے گی. اللہ اکبر. تو کون ہے پھر جب بچ سکے گا؟ اور اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی. اوحا مطلب ہوتا ہے خفیہ اشارہ. ایک تو وہی وہ ہے نا جو نبیوں کو ہوتی تھی، ایک ہے الہام، جیسے شہد کی مکھی کو اللہ تعالی نے، اس کے لیے بھی وہی کا لفظ آیا، یا ام موسیٰ کو کے دل میں الہام ڈالا، اس کے لیے بھی وہی کا لفظ آیا. وہ وہی نہیں جو انبیاء کے پاس جاتی، تو یہ وہ وہی نہیں ہے کہ جو زمین کو کی جا رہی ہے، بلکہ یہ ایک اشارہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا. بی انا، بی سببیہ کہلاتا ہے، بی سببیہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو فرمایا، اس کو الہام کیا. اور یہ کیا پہلی بار بول رہی ہے؟ یہ زمین کیا پہلی دفعہ بولے گی؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ زمین نے پہلے بھی کبھی بات کی بھی ہے؟ نہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں بول رہی، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کیا تھا اس کو، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے پوچھا تھا نا کہ کیا تم سبمٹ کرتے ہو، تو ان اوکر ہن، تو دونوں نے کہا تھا ہم آتے ہیں خوشی کے ساتھ، فرما بردار ہو کے. یہ قرآن کریم میں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دن بھی جب اشارہ کیا، الہام کیا، وحی کی، تو یہ بولنے لگی. اوحا کے بعد الہ آنا چاہیے نا، کہ وحی کی اس کی طرف. ہمیشہ اوحا کے بعد جو پریپوزیشن آتا ہے وہ الہ کا آتا ہے، مگر یہاں پر الہ کا نہیں آ رہا، یہاں پہ لا آ رہا ہے، لہا، لا لا اس وقت آتا ہے جب ادی نہ ہو، جب یہ فیل ہو، فیل کے بعد پریپوزیشن آتی ہے نا ورب کے بعد، تو یہاں پہ اس کا مطلب ادی نہ تھا، لیکن وہ اختصار کی وجہ سے، شارٹ کرنے کے لیے آزینہ نکل گیا، لیکن لا بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آزینہ ہے، कि अल्लाह ताला ने इसको इजाजत दी। फर्क होता है ना एक हुक्म देने में और इजाजत देने में। देखिए बच्चे कई दफा कहते हैं मसलन है कि खेलने के लिए, एक क्या क्या आप उनको हुक्म दें खेलने का और एक क्या आपने इजाजत दे दी, क्या क्या फर्क होता है दूसरे दोनों में? देखिए इजाजत देना तब होता है जब वो पहले से खेलना चाहते हैं। अब आपने उनको इजाजत दे दी तो वो उछलते हुए भागते गए गए और उन्होंने कहा कि हमें इजाजत मिल गई है खेलने, इसका मतलब पहले से चाहते हैं। तो ऐसी ना कल यहाँ पे पता चला कि इजाजत से पता चला कि जमीन तो पहले ही चाहती थी, बस वो तो इशारे की मुंतजिर थी, वो तो बताना चाहती थी। अहवाल जो उसके ऊपर होते रहे, मुजरिमों के करतूतों को भी बचाना चाहती थी और नेकोकारों की वो खुफिया इबादतों के भी हाल बयान करना चाहती थी, लेकिन आज तक उसको इजाजत नहीं थी, उस दिन इजाजत मिलेगी। अल्लाह अकबर। तो अवहा और अजीना यहाँ पे है पर ला से पता चला, ये बारीक चीजें हैं। जब हम कहते हैं ना कभी तदब्बुर करें तो यही है तदब्बुर, इस सूरत के अंदर तदब्बुर कीजिए इसको, जैसे मैंने कहा स्लोली पढ़ें, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ताकि ये अंदर जज़ब हो। यौमा इदिन, दोबारा आया यौमा इदिन, उस दिन। फिर अब आपको समझ आ रही है कि जब भी यौमा इदिन आ रहा है ना तो टोन सख्त होती जा रही है। यस्दुरुन्नासु अश्ताता, पलटेंगे लोग मुख्तलिफ हालतों में। बाज ने यहां पर वक्फ किया और इसको एक आयत लिया और उनने इस सूरत की 9 आयतें बताई, और बाज ने इसको यहां पर फरमाया कि ये एक ही यानी आयत है, तो लियरो आमालहुम, ताकि वो देखें अपने आमाल को, अपने आमाल को देखने के लिए वो आएंगे निकलेंगे। ये अहम बात है कयामत के मुहासबे के बारे में, कि लोग आएंगे, पहले तो सारे ही आएंगे, आ गए ना सारे ही इकट्ठे हो गए, लेकिन उसके बाद हर एक का इंडिविजुअल हिसाब होगा। और फिर पलटेंगे लोग, यसदुरु का मतलब होता है पलटना, एक होता है वारिद होना, जो वारिद होना होता है ना, जब पानी के ऊपर वारिद होना वो जाना होता है और सुदूर आना होता है, तो वो पलटेंगे मुख्तलिफ हालतों में, जो हिसाब किताब हो जाएगा ना, तो उसके बाद कोई तो जन्नती है तो कोई जहन्नमी है, कोई जीत गया आज और कोई हार गया आज, कोई कामयाब हो गया और कोई नाकाम हो गया, तो मुख्तलिफ हालतें होंगी, हिसाब की जगह से मुख्तलिफ हालतों में वो पलटेंगे वापस आएंगे। अल्लाहु अकबर। लियुरौ आमालहुम, और ये भी माना है कि यहां से वो अलग अलग हो जाएंगे, पहले एक दफा ही सारे जमा हुए, उसके बाद फिर इज्तमा नहीं होगा, इसलिए कि वो अपने आमाल को देख लेंगे, क्योंकि भलाई बुराई का बदला पा लेंगे, वो दिखाए जाएंगे। लियुरौ आमालहुम, ताकि वो दिखाए जाएं अपने आमाल, यानी इनको दिखाया जाएगा उनका एक एक एक्शन, एक एक बात, अभी सिर्फ देख रहे हैं, अभी इसके अंदर इनको नहीं पता कि क्या अभी होना है उनके साथ आगे, अभी सारे आमाल यानी मिले जुले हैं, अभी ये पता नहीं है कौन सा एक्सेप्टेड है कौन सा नहीं एक्सेप्टेड है, छोटा बड़ा हर अमल यहाँ पे लिखा हुआ है, अब दिखाए जा रहे हैं इनको आमाल। तो हमें पता चला कि लोग जाएंगे मुख्तलिफ हालतों में होंगे उनको, ताकि वो अपने आमाल देखे, और अब उनके ऊपर जमीन ने भी गवाही दे दी, इनका हिसाब किताब शुरू हो गया, फिर मुख्तलिफ हालतों के अंदर ये पलटे। अब अब ये गवाही भी क्यों लाई गई और आमाल भी क्यों दिखाए जा रहे हैं, ताकि कोई ये ना कहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा क्या कसूर है। यहाँ पे तो बहुत जल्दी अगर कोई किसी से कोई गलती हो जाए कोई मानता नहीं है। खास तौर पे अगर ऐसी चीजों के इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सख्त हैं तो इंसान अपना कसूर मानने से इनकार कर देता है, कहता उसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैंने क्या किया है। तो यहां पर इंसान के आगे उसके सब चीजें रख दी जाएंगी, जुबानें तो बंद हो गई, आजा बोल रहे हैं, जमीन बोल रही है, और इंसान अपने आमाल भी खुद देख रहा है। तो पहले तो सब इकट्ठे थे, फिर उसके बाद जुदा जुदा हो गए, अकेले अकेले हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह, फमन यअमल मिथक़ाला ज़र्रतिन, फा आता है ना, तो फा का मतलब एक तो ये होता है कि पिछली बात है ना उसके बाद ये हुआ फिर ये होगा, फिर जो कोई अमल करे मिथक़ाला ज़र्रा एक जर्रे के वजन के बराबर, सकल मैंने आपको बताया ना वेट को कहते हैं, जर्रे के बराबर जिसको कहते हैं एटम्स वेट, खई रंगी भलाई का यरा हु वो देख लेगा उसको, जिसने किया होगा अमल एक जर्रे के बराबर वो भी देख लेगा उसको, वह मई अमल और जिसने अमल किया होगा मिथकाला जर्रतिन जर्रे के बराबर जर्रे के वेट के बराबर शरन बुराई का यरा रा देखना होता है वो देख लेगा हु उसको। ये दो आयते हैं जो मैंने जैसे आपको बताया कि ये यानी सारा कुछ जो आज तक हमारी जिंदगी हम इस जमीन पे गुजार रहे हैं जो भी कुछ कर रहे हैं, या कयामत का दिन इतना बड़ा दिन जिस चीज के लिए बर्पा किया गया कायम हुआ, या हमारी पूरी जिंदगी हमने किसके लिए गुजारी, वो ये दो बातें हैं कि ये हम देख लें जो नेकी और देख लें जो बुराई की। समझ आई? अरे ये है जिस्ट या ये है कल्मिनेशन सारी चीजों की। तो जिसने मिसकाला जर्रा भी किया जर्रे के बराबर भी नेकी की वो भी उसको देख लेगा, जर्रा कितना होता है। बहुत सारी इसके बारे में बातें की गई कि एक तो ये कहा गया कि चींटी के बराबर उसको जर्रा कहते हैं, बाज ने कहा चींटी के अंडे के बराबर उसको जर्रा कहा गया है, जिसको हम चींटी का अंडा भी देखना तो मुमकिन नहीं है, पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन बाज ने कहा जूं के अंडे के बराबर, जैसे आप देखे देखे सर में जुएं पड़ जाएं तो लीखें होती हैं, वो जूं का अंडा होता है, बाज दफा तो आंख से इससे नजर भी नहीं आता, इतना छोटा अमल, इतना छोटा अमल। अब ये इसी को देखने के लिए ये सारा दिन बरपा हुआ है, और हर कोई अपने अपने देख रहा है। दुनिया की जिंदगी में हम अपने आमाल को देख नहीं पाते, बस हो गए वो आगे जाते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं क्या किया, ना जजा का पता ना सजा का पता, मगर वहां पे अल्लाह ताला दिखा देगा हर हर चीज जो हम भूल चुके हैं, और इन आमाल का वजन भी होगा जो मिसकाला जर्रा के बराबर होंगे उसका भी वजन है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं इजाद हुआ जिसके अंदर इतने से जर्रे का वजन हो सके, दुनिया में नहीं है। यानी आप अगर कहीं डॉट लगाएं या एक 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 लीख जो जूं का अंडा है कहीं रखें तो आप कहीं स्केल में देखें वो उसका कोई वजन आए, अब सेंसिटिव से सेंसिटिव स्केल भी दुनिया का ले लें उसमें नहीं, लेकिन अल्लाह ताला की जो मीजान है ना वो डिफरेंट है। उसके अंदर इसका भी वेट पता चल जाएगा। इसीलिए खजूर ओहद पहाड़ के बराबर होगी जो इखलास के साथ दी गई। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि इंसान उस दिन इस हालत में आएगा, वो राइट देखेगा उसके अमाल, लेफ्ट देखेगा उसके अमाल, सामने जहन्नुम देख रहा होगा जो भड़क रही है। तो इससे बचाव का इंतजाम करो, चाहे खजूर दे के, कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है ना, एक खजूर ही दे लो। अरे खजूर का भी वजन होगा, आपको क्या पता वो खजूर इखलास से दी गई हो तो पहाड़ों के बराबर हो, और कहीं पहाड़ों के बराबर अमल होंगे और वो घर तो बना के उड़ा दिए जाएंगे। तो वो जो वजन भी उस दिन इंसान देखेगा, उन नेकियों को भी देखेगा, और इतनी इतनी छोटी नेकी और छोटी बदी को भी इंसान पालेगा। इसी वजह से तो मैंने आपको जो शुरू में बताया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खा रहे थे कि ये आयत उतरी, तो उन्होंने खाने से हाथ उठा लिया और पूछने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मैं एक एक जर्रे के बराबर का बदला दिया जाऊंगा? आपने फरमाया, सिद्दीक, दुनिया में जो जो तकलीफें तुम्हें पहुंची हैं ये तो उसमें आ गए, और नेकियां तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ जखीरा हो गई, और इन सब का पूरा पूरा बदला कयामत के दिन तुम्हें दिया जाएगा, सब का बदला दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और ये रिवायत आती है कि ये सूरत ये फिर सुन के, जो कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की मौजूदगी में नाजिल हुई थी, सुन के वो बहुत रोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो फरमाया, मुझे ये सूरत रुला रही है, ये सूरत मुझे रुला रही है। क्योंकि वो डरते थे ना कि अपने आमाल देखने पड़ेंगे, बड़े क्या इतने छोटे छोटे भी। और अच्छा, हमारे जहनों में क्या होते, वो बड़ी बड़े चंक्स होते, चाहे गुनाह है चाहे नेकियां, मैंने इतने कुरान खत्म कर लिए, या मैंने इतने कोई बड़ा कोई गुनाह किसी से हो गया, वो होते। छोटे छोटे तो हमने कभी सोचे ही नहीं होते, और छोटे छोटे हमारे जहन में भी नहीं रहते। नहीं, 1 डॉलर कहीं हमने सदका किया, वो तो जेन में भी नहीं रहता। या छोटी सी कोई बुराई है, एक आराम से, बड़े आराम से एक झूठ बोल दिया, तो कभी भी सोचा भी नहीं। या इधर उधर नजरें डाल दी, जो कि एक नजर ही थी ना, लेकिन वो गलत नजर थी, वो डाली, उसका तो कभी सोचा ही नहीं। जुबान के से एक ऐसी बात कोई निकाल दी जिसका कभी बड़ा तसव्वुर ही नहीं किया। लेकिन यहां से पता चलता है कि छोटी सी नेकी को भी हकीर ना समझे, वो भी वजन रखती है, और छोटे से गुनाह को भी बेजान ना समझे, वो भी वजन रखता है। छोटी से छोटी नेकी हो या बुराई हो, उसको मामूली ना जाने, सिर्फ बड़ी बड़ी पे नजर ना रखे। छोटी भी अगर आपके रास्ते में कोई नेकी पड़ी भी है और आपको जाते जाते मिल सकती है, वो मामूली सी है, वो इतनी छोटी है कि कोई आपकी इतनी एफर्ट नहीं लग रही उसके लिए। मिसाल के तौर पे बाज दफा हम एक किसी के काम आ सकते हैं सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए, एक फोन मिलाना है और उसका कोई काम हो सकता है, और हम उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हमारी तवज्जो ना बहुत बड़े बड़े किसी कामों पे, कोई तहज्जुदों पे है, कोई इसके ऊपर, कोई एक्स्ट्रा नफल पढ़ने में। ये छोटा सा एक काम है किसी का, हो सकता है सिर्फ एक फोन उठाना है, सिर्फ एक किसी को पानी पिला देना है, सिर्फ किसी के साथ मुस्कुरा के बात कर लेना है, किसी के साथ नरमी से बात कर लेना है, लेकिन हम उसको कोई बड़ी चीज समझते ही नहीं। इसलिए बहुत सारी छोटी छोटी नेकियों को हम ऐसे ही गुजार देते, इसी तरह बहुत सारी छोटे छोटे गुनाहों को हम आराम से करते जाते हैं कि ये कोई बात नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों को हल्का ना समझो, ये सब जमा हो के आदमी को हलाक कर डालते हैं। जैसे कुछ लोग एक जगह पे उतरे, एक एक दो दो लकड़ियां चुन चुन के लाते रहे, तो लकड़ियों का ढेर लग जाता है। फिर अगर उनको सुलगाया जाए तो आग पे जो चाहे आप पका सकते हैं, वो इतनी यानी बड़ी आग हो जाती है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ईमान वाली औरतों, तुम अपनी पड़ोसन के भेजे हुए तोहफे को हकीर ना समझो, चाहे वो एक खुरी हो, एक बकरी का खुरी हो, चाहे पाया एक हो। इसी तरह हदीस में आता है कि साहिल को कुछ ना कुछ दे दो, चाहे वो जला हुआ खुरी हो, चाहे वो आधी रोटी है, चाहे वो कुछ भी है, छोटी सी चीज भी। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा गुनाहों को हकीर ना समझो, याद रखो इनका भी हिसाब लेने वाला है। हजरत सासा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी आयत सुन के फरमाया था कि सिर्फ यही आयत काफी है, और ज्यादा अगर ना भी सुनूं तो कोई मुझे जरूरत नहीं। अगर यानी सिर्फ इतनी एक आयत कोई लेकर अपनी जिंदगी में चल पड़े ना तो बहुत काफी है। आप किसी को अच्छा मशवरा दे देते हैं, आप किसी को कोई अच्छी नसीहत कर देते हैं, आप किसी को कोई अकल की बात समझा देते हैं, किसी चीज बुराई से बाज रख लेते हैं। मिसकाला जर्रा के बराबर भी कोई नेकी, यानी इससे ज्यादा क्या छोटी नेकी होगी कि एक मुस्कुरा के देख लेना, वो भी एक सदका है। हर वक्त एक शक्ल के ऊपर 12 बजे में कोई देख के डर जाए कि किससे बात करूं या ना करूं, जो बात करे तो तड़ से उसको जवाब देना, ये भी तो बुराइयां ही है ना। जानते हैं आप सबसे वजनी अमल तौहीद के बाद कौन सा है जो तुलेगा अमालनामे में? सबसे वजनी हुस्ने अखलाक, अच्छा अखलाक, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो ज्यादा नहीं रहती। तो छोटी छोटी नेकियों को जमा करते रहें, जैसे आप देखते हैं बच्चे अपना एक वो मनी बॉक्स या वो कुछ बनाते हैं, हमारे जमाने में गल्ला होता था, उसके अंदर छोटे छोटे कॉइन्स भी डालते हैं और एक दिन उसको तोड़ते हैं, खोलते हैं तो इतने सारे पैसे निकल आते हैं। तो अगर आप छोटी छोटी नेकियों को भी जमा करते रहते ना, तो इनको हकीर ना जाने, इनको ये ना मामूली ना समझे, मैं जब बस करूंगी तो बड़ा ही कोई काम करूंगी, ये तो छोटा मेरी शान के खिलाफ है, नहीं उनको भी करें। क्या पता कौन सी नेकी उस दिन आमाल नामे में कितनी वजनी तुल जाए, और क्या पता कौन सी नेकी की मुझे उस दिन जरूरत पड़ जाए। ये सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को तो हम बिल्कुल ऐसे सोचते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, हालांकि हदीस में देखें तो इनका कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये तो जर्रे के बराबर नेकिया नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी नेकिया है। अब जर्रे के बराबर नेकिया तो इससे भी छोटी है। तो आपने एक सुन्नत को पूरी कर लिया, आपने जूता पहले राइट फुट में पहन लिया, आपने राइट हैंड से खा लिया कि ये सुन्नत है। यहाँ देखें आप, एक छोटी सी आपके लिए नेकी शायद को कोई इतनी बड़ी ना हो, लेकिन ये भी एक नेकी है। तो जूं के अंडे के बराबर भी अमल अगर तुल जाना है तो बताइए फिर किस तरह हम हर हर अमल को संभाल संभाल के सोच सोच के करें, ये भी नेकी कर लूं, ये भी नेकी कर लूं। और याद रखें कि ये गुनाह जो है, गुनाह मुनाफिक ही है जिसको अपने गुनाहों की कोई परवाह नहीं होती। उसके लिए हदीस में आता है गुनाह ऐसे है जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी, कि ऐसे बस उड़ा दिया, गुनाह उसके लिए कोई चीज नहीं। और मोमिन के लिए गुनाह ऐसे है जैसे पहाड़ के नीचे बैठा हुआ। तो गुनाहों को कभी मामूली ना समझे कि कोई बात नहीं, अगर ये हो भी गया तो क्या हो गया, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, सारी दुनिया करती है, कोई बात नहीं, आजकल तो ये कॉमन ही है, ये ना समझ के करते रहे। क्योंकि पता नहीं है कि जब स्केल्स हमारे रखे जाए, मीजान रखा जाए, हो सकता है वो एक गुनाह ही हो जो पलड़े को नीचे ले जाए। क्योंकि जब मीजान में तोले जाएंगे तो इंसान उस दिन चाहेगा कि एक एक नेकी उसकी तुल जाए, और चाहेगा कि काश कि गुनाह ना किया होता। अल्लाहु अकबर। तो ये हमारी सूरत जिलजाल, अब इंशाअल्लाह ताला इस सूरत को जब हम पढ़ेंगे तो इस समझ के साथ पढ़िएगा, और इसको ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा कि इसमें सारी जिंदगी की मेहनतों का खुलासा आ गया और जिंदगी की डायरेक्शन पता चल जाती है, और इंसान इसको लेकर फिर बहुत सारी चीजों में फैसला कर सकता है, ये काम करूं कि ना करूं। ये हमें आखिरी दो आयतें समझा देंगी, करना है कि नहीं करना। बहुत अच्छी हमारी ज़िंदगी की हमें डायरेक्शन मिल जाती है इससे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। इसकी तिलावत सुनिए।
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.